सवाल ये है कि सालगिरह जो मनाई जाती है उसमें सालगिरह मनाना या किसी को सालगिरह पर मुबारकबाद देना या हदिया देना, इस बारे में क्या हुक्म है? इस बारे में बाज़ उलमा की राय भी लिखी है। जैसे सवाल करने वाले ने ये कहा है कि बाज़ उलमा कहते हैं कि अच्छा, ये अगर केक वगैरह ना हो तो फिर कोई हर्ज की बात नहीं है। असल इसकी बुनियाद हम समझ लें तो शायद मसला वाज़ेह हो जाए। एक होता है किसी चीज़ का हलाल और हराम होना, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई चीज़ पाई गई थी और उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि ये नाजायज़ है, ये मना है। वहाँ पर तो खैर, एक उस ज़माने के अगर कोई मसला होता और उस ज़माने के में वो चीज़ें पाई जाती, फिर तो हम उस लिहाज से कुरान और हदीस से उसका हुक्म तलाश करते हैं। बात के लिए यह है कि शरीयत ने उसूल बयान कर दिए हैं। चूंकि क़्यामत तक के लिए यही दीन बाकी रहने वाला था, नई वही का कोई सिलसिला नहीं है, तो उसूल बयान फरमा दिए। और उन उसूलों में एक अहम उसूल हमने सूरह फातिहा में पढ़ा था कि देखो, नेक लोगों वाला तरीक़ा इख्तियार करो, अनामत अलैहिम। और नेक लोगों वाला तरीक़ा इख्तियार करने के साथ साथ जो गैरों का तरीक़ा है उससे बचो, गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दालीन। ये सूरह फातिहा की तालीमात का ख़ुलासा, अगरचे फिर कुरान करीम में उसकी तफसीलात आती हैं, अहादीस में उसकी तफसीलात आती हैं, बहरहाल ये ख़ुलासा है। अब इसके लिहाज से हम देख लें कि अगर कोई शख्स बिल्कुल यहाँ वालों के तरीक़े पर सालगिरह मनाता है, उसमें केक भी है, उसमें वो मोम भी जलाता है, मोमबत्ती भी जलाता है, और यानी उसी तरीके से करता है, हम कहेंगे हाँ ज़ाहिर है कि बिल्कुल नाजायज़ है, पूरी पूरी तरह गैरों की मुशाबहत है। मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुवा मिन्हुम, जो किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करे वो उन्हीं में शामिल है, तो हदीस में आता है, अगर पूरी तरह करता है। और अगर पूरी तरह नहीं करता तो फिर हम ये नहीं कहेंगे कि मुशाबहत नहीं है, तो सही, सालगिरह की बुनियाद ही गैरों से आई है। सहाबा के दौर में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, सहाबा में, खैरुल क़ुरून में इसका जिक्र नहीं मिलता। तो इसका मतलब खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को अगर देखा जाए, मीलादुन्नबी, अगर होता सालगिरह की कोई बुनियाद होती तो मीलादुन्नबी मनाया जाता खैरुल क़ुरून में, शुरू के अदवार में, शुरू के कई सौ साल तक, तो हमें उसका कोई जिक्र ही नहीं मिलता। बहरहाल इस वजह से हम ये कहेंगे कि पूरी तरह अगर कोई इनके तरीक़े पर अमल करता है फिर तो नाजायज़ है ही, इसमें कोई शुबा नहीं। लेकिन जितना ज़्यादा इंसान इनके तरीक़े में जितना दूर रहेगा इतना ही बेहतर है। और थोड़ी सी मुशाबहत कि सिर्फ अच्छा ठीक है मुबारकबाद दे दी, हम कहेंगे वो भी क्यों करना है, इतना भी क्यों करें। असल यह है कि इंसान अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखे। अब वो हलाल और हराम और उसका फ़ैसला और किसमें कितना गुनाह और गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा, ये जाहिर है कि एक उसूली चीज़ें हैं। हम अपने आप के अमली लिहाज से, चूंकि मैं बताना चाह रहा था, तो अमली लिहाज से हमें ये देखना है कि देखो, इन चीज़ों से इंसान अपने आप को दूर रखे, इन चीज़ों से इंसान दूर रखे। और जाहिर है कुरान की आयात और अहादीस इस बारे में बिल्कुल वाज़ेह हैं कि दूसरों की मुशाबहत इख्तियार करने से बचो। जो चीज़ इस्लाम में शुरू दौर में नहीं रही उसको क्यों अपने ऊपर, क्यों एक चीज़ अपने रिवाज में, रिवाज के तौर पर उसे इख्तियार करते हो। आबा व अजदाद को या बड़ों को देख कर हम अपने अपने तरीक़ों तौर तरीक़ में ये चीज़ें ले आएँ, और इससे मसाइल कितने खड़े होते हैं। ज़ाहिर है कि हमारी नज़र वहाँ तक नहीं जाती। शादी में खुशी के मौके पर लोग कहते हैं खुशी का मौका, खुशी का मौका है। उन खुशी के मौके पर जो अखराजात करते हैं, जिनको अल्लाह ने माल दिया है, उनके अखराजात करने की वजह से जो बेचारे गरीब हैं उनकी शादियाँ रुक जाती हैं। अब इनसे ये तो नहीं हो सकता कि अच्छा, हम अपने अखराज कर रहे हैं तो अखराजात कर रहे हैं तो ठीक है, जितना हमने खर्चा किया इतने खर्चे में हम किसी और की, हर ख़ानदान अगर ये भी सोच लें कि कम अज़ कम एक गरीब ख़ानदान की बेटी की हम शादी करा दें, कोई नहीं कराएगा। तो बहरहाल जब ऐसा नहीं होता तो इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगियों से निकालने की ज़रूरत है। वरना होता यह है कि यह तो यहाँ का एक तरीक़ा है कि अच्छा, मौका मौका से खर्चे करवाओ ताकि लोगों के पास पैसे न रहें, ये पैसे मालदारों के पास जमा हो जाएं। फादर्स डे आएगा, मदर्स डे आएगा, तरगीब देंगे, क्या माँ से मोहब्बत नहीं है कि माँ के मदर्स डे में तुम उसको हदिया नहीं देते। ये तरीक़े होते हैं पैसे निकलवाने के, ये बिज़नेस करने के लिए लोगों ने बनाया है। इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगियों से निकालने की ज़रूरत है। हाँ, इंसान दीनी के लिहाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो की तालीमात का जो जिससे जो हमें बातें मालूम होती हैं कि दीनी बुनियादों को अपने बुनियाद बनाओ, दुनियादारों की اور غیروں کے طریقوں کو اپنی زندگیوں میں آنے سے دور رکھوں. یہ ایک بنیادی تعلیم ہے. اس لحاظ سے ہر ایک اپنا دیکھ لے کون کتنا حصہ لیتا ہے غیروں کے طریقے میں. ہم ظاہر ہے کہ حتمی طور پر میں کسی کی مخالفت بھی نہیں کرتا کہ کسی نے غلط کہا کسی نے صحیح کہا, لیکن بہرحال جتنا انسان ان چیزوں سے بچے گا اتنا زیادہ وہ دینداروں کے طریقوں کے اور صلحاء کے طریقے کے زیادہ قریب ہوگا. اچھا, ایک اور سوال ہے. سوال یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات, کیا وہ اسراء والمعراج یہ مستقل ہیں؟ یہ اسراء والمعراج کی نہیں, دوسرے موقع پر یہ آیات نازل ہوئی تھی. ایک اور سوال ہے, سورہ بروج عصر کے بعد پڑھنی چاہیے؟ سورہ بروج عصر کے بعد پڑھنے کے بارے میں مجھے کوئی روایت معلوم نہیں ہے. ہو سکتا ہے بعضوں کے تجربات میں ہو, تو ہو سکتا ہے, میرے علم میں نہیں ہے. ایک اور سوال ہے, غم اور مصیبت میں ہو تو کون سا عمل کرنا چاہیے؟ اس بارے میں ایک دعا ہے, حدیث میں آتی ہے. ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی ہوئی باتیں سب سے زیادہ مؤثر و مفید ہوتی ہیں, تو غم اور پریشانی کے موقع پر انسان کو کیا پڑھنا چاہیے؟ اصل یہ ہے کہ وہ کس قسم کا غم ہے, کس قسم کی پریشانی ہے. جب یہ بات آئی تو میرے ذہن میں آیا, اس کا بھی تذکرہ کر دوں. ویسے ذہن میں تھا بھی, مستقل تھا, گزشتہ کل بھی تھا, آج بھی تھا, بس ابھی درس شروع ہونے کے بعد میرے ذہن سے نکل گیا. ہمارے بفلو میں ایک ہمارے یہاں سے ہمارے ادارے میں ہی پڑھے ہیں, طالب علم ہیں اور اب تو عالم ہیں, ماشاءاللہ مدرس ہیں, اور ان کے والد وہاں بفلو میں مسجد زکریہ میں عصر کی نماز پڑھ رہے تھے. جو نماز کا جیسا پابند ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ ایسی موت بھی دیتے ہیں. کما تعیشون تموتون, جیسی زندگی گزارو گے ایسی موت آئے گی. عصر کی نماز پڑھ رہے تھے, رکوع سے اٹھے اور بس وہیں گر گئے. مسجد ہی میں ڈاکٹر بھی تھے, انہوں نے بھی دیکھا, اندازہ ہو گیا کہ اچھا بس اب جا رہے ہیں اور انتقال ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک سبق رکھا کہ جیسی زندگی انسان گزارتا ہے تو موت بھی اسی طرح آتی ہے. نماز کے پابند, مسجد کے پابند, جماعت کے پابند, تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے اتنی بہترین موت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ بہرحال ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے, ان کے جو پسماندگان ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. ابھی ظہر کے بعد ان کا جنازہ ہونے والا تھا. تو غم اور پریشانی کے میں بتا رہا تھا کہ اس میں اصل تو اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں, یعنی اس کو ایک ہر ایک کے لیے ایک ہی چیز بتانا ذرا مشکل ہے. مختلف اسباب ہوتے ہیں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ کبھی ہوتا ہے کہ کسی کے مثلا جیسے وہ ان کے گھر والی بیوہ ہو گئیں, تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا تو فرمایا تھا کہ یہ دعا پڑھا کرو, اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا. اے اللہ, میری جو مصیبت ہے اس میں اجر عطا فرما, اور جو تو نے مجھ سے نعمت چھین لی اس کا بہترین, اس سے بہتر بدل عطا فرما. ابو کرماتی میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں ابو سلمہ سے بہتر کون میرے لیے اچھا بدل ہو سکتا ہے. ابو سلمہ جیسے اتنے اچھے شوہر اور اتنے دیندار, اتنے نیک, ایسے اخلاق ہر لحاظ سے اتنے اچھے شوہر مجھے کہاں مل سکتے ہیں. پھر بھی کہتی ہے میں دعا کرتی رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق, اور قسمت ایسی جاگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہوا اور ام المؤمنین میں شامل ہو گئیں. تو بہرحال یہ اس لحاظ سے تھا. اب غم اور پریشانی کس قسم کی ہے, لیکن ایک عمومی غم اور پریشانی کے موقع پر پڑھنے کی دعا حدیث میں آتی ہے. میں انشاءاللہ